हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 13। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवस्तवे वेदी सांगपत क्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। अत्यंत ही सुंदर श्लोक है पहला स्कंद पांचवा अध्याय श्लोक नंबर 13। इस श्लोक में नारद मुनि अपने शिष्य को उसके जितनी योग्यताएं हैं उनके विषय में बता रहे हैं और फिर उन्हें ये बता रहे हैं कि तुम ही योग्य पात्र हो जो इस अत्यंत ही महान पुस्तक का निर्माण कर सकते हो। तो नारद मुनि वेद व्यास जी को कह रहे हैं कृपया मेरे साथ साथ श्लोक को उच्चारण कीजिए। अथो महाभाग भवानमोघद्रे शुचिश्वासद्यरतो वृतव्रतः उरुक्रमस्य खिलबन्धमुक्तये समाधिनानो स्मरतद्विचेष्टितम् अथो महाभाग भवानमोघद्रे शुचिश्वासद्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्य खिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मरतद्विचेष्टितम् अथो महाभाग भवानमोघद्रीक् शुचिश्वासद्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्य खिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मरत द्विचेष्टितम् अथो महाभाग भवानमोघद्रीक् शुचिश्वासद्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्य खिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मरतद्विचेष्टितम् अथो महाभाग भवानमोघद्रीक् शुचिश्वासद्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्य खिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मरतद्विचेष्टितम् अथो महाभाग भवानमोघद्रे शुचिश्वासद्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्य खिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मरतद्विचेष्टितम् शब्दों का अर्थ अथो अतः महाभाग परम भाग्यशाली भवान आप अमोघद्रिक सिद्ध सृष्टा शुचि पवित्र या निर्मल श्रवा प्रसिद्ध सत्यरत सत्य व्रत को पालने वाला धृत व्रत अर्थात आध्यात्मिक गुणों में स्थित उरुक्रमस्य अलौकिक कार्य करने वाले ईश्वर का अखिल संपूर्ण जगत का बंध बंधन मुक्तये मुक्त करने के लिए समाधिना समाधि के द्वारा अनुस्मर बारंबार सोचकर वर्णन करो तत् विचेष्टितम् भगवान की विविध लीलाओं को। अनुवाद हे व्यासदेव तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलंक है तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं जन सामान्य को स्वभाव से साहित्य के प्रति रुचि होती है। वे अज्ञात के विषय में किसी अधिकारी से सुनना तथा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी रुचि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण सहायते से बिगड़ जाती है जो इंद्रियों की तृप्ति कराने वालों विषयों से पूर्ण होता है। ऐसे साहित्य में अनेक प्रकार की लौकिक कविताएं तथा दार्शनिक कल्पनाएं दी रहती हैं, जो न्यूनाधिक रूप से माया से प्रभावित रहती हैं और जिनका अंत इंद्रिय तृप्ति में होता है। ऐसा साहित्य यद्यपि सही अर्थ में व्यर्थ होता है, लेकिन अल्पज्ञ लोगों का के ध्यान को आकर्षित करने के लिए खूब सजाया हुआ रहता है। इस प्रकार आसक्त जीव भवबंधन में अधिकाधिक फंसते जाते हैं और हजारों पीढ़ियों तक उनके मोक्ष की कोई आशा नहीं रहती। श्री नारद परम वैष्णव होने के कारण ऐसे व्यर्थ साहित्य के अभागे शिकारों के प्रति करुणा से अभिभूत होकर श्री व्यास देव को ऐसा दिव्य साहित्य रचने के लिए उपदेश देते हैं जो न केवल आकर्षक हो अपितु सभी प्रकार के बंधनों से मोक्ष प्रदान कराने वाला हो। श्री व्यास देव जी या उनके प्रतिनिधि ही सुपात्र हैं, क्योंकि वे वस्तुओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में भली भांति प्रशिक्षित हैं। श्री वेद व्यास तथा उनके प्रतिनिधि अपने आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शुद्ध विचार वाले हैं, अपनी भक्ति के कारण दृढ़ वृत्ति हैं और भौतिक कार्यकलापों में सड़ रही पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए कटिबद्ध हैं। पतित आत्माएं नित्य प्रति नूतन समाचार प्राप्त करने की इच्छुक रहती हैं और व्यास देव या नारद जैसे योगी ही उन्हें आध्यात्मिक जगत के असीमित समाचार प्रदान कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि यह भौतिक जगत अखिल सृष्टि का एक अंश मात्र है और यह पृथ्वी संपूर्ण भौतिक जगत का एक खंड मात्र है। सारे विश्व में सहस्रों ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने हजारों लाखों वर्षों से जनता की सूचना के लिए हजारों साहित्यिक कृतियां तैयार की हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनमें से किसी के द्वारा भी पृथ्वी पर शांति तथा अमन चैन नहीं आ पाई। इसका कारण इन कृतियों की आध्यात्मिक शून्यता है। अतएव वैदिक साहित्य विशेष रूप से श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत की संस्तुति की जाती है, जिससे भौतिक सभ्यता के उस चंगुल से अभीष्ट छुटकारा प्राप्त हो सकता है जिससे मानव शक्ति क्षीण होती जा रही है। श्रीमद् भागवत गीता स्वयं भगवान द्वारा कहा गया संदेश है, जिसका अंकन वेद व्यास जी द्वारा हुआ है और श्रीमद् भागवतम उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दिव्य आख्यान है। शाश्वत शांति तथा कष्टों से मुक्ति की जीव की लालसाओं को तुष्ट करने में यह ग्रंथ सर्वसमर्थ है। अतएव श्रीमद् भागवत विश्व भर के जीवों को समस्त प्रकार के भवबंधन से पूर्ण छुटकारा दिलाने के लिए है। भगवान की लीलाओं का ऐसा दिव्य आख्यान व्यास देव तथा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधियों जैसे मुक्त जीवों द्वारा ही वर्णित किया जा सकता है, जो निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रत रहते हैं। केवल ऐसे ही भक्तों को भगवान की लीलाएं तथा उनकी दिव्य प्रकृति भक्ति के कारण स्वतः प्रकट हो पाती है। दूसरा कोई चाहे अनेक वर्षों तक चिंतन क्यों ना करे, ना तो भगवान के कार्यों को जान सकता है ना उनका वर्णन कर सकता है। भागवत के वर्णन इतने सूक्ष्म तथा सही हैं कि 5000 वर्ष पूर्व जो भी भविष्यवाणी की गई थी वह अब सही उतर रही है। अतएव लेखक की दृष्टि भूत वर्तमान तथा भविष्य को पहचानती है। व्यास देव जैसे व्यक्ति ने ना केवल दृष्टि शक्ति तथा पांडित्य के मामले में अपितु श्रवण चिंतन अनुभव तथा अन्य सभी इंद्रिय कार्यों में भी सिद्ध होते हैं। मुक्त जीव की इंद्रियां पूर्ण होती हैं और ऐसी पूर्ण इंद्रियों से ही इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जा सकती है। अतः श्रीमद् भागवतम वेदों की संकलन करता परम सिद्ध व्यक्ति चिला वेद व्यास द्वारा किया गया परम पूर्ण भगवान का परिपूर्ण वर्णन है। चिला प्रभुपाद की जय। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। आज नारद मुनि अपने शिष्य वेद व्यास जी को बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी योग्यताएं हैं जिसके कारण तुम इस योग्य हो कि तुम इस महान साहित्य की रचना करो। इस साहित्य की रचना करने की आवश्यकता क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि संसार में ज्यादातर लोग का स्वभाव होता है कि वो जानना चाहते हैं ना, जो चीज उन्हें नहीं खबर है अज्ञात विषय में किसी अधिकारी से जानना चाहते पढ़ना, ये मनुष्य मात्र की ऐसी मेंटलिटी है कि वो कुछ जानना चाहता है। जैसे छोटा बच्चा भी होगा ना, एक बुक उसके सामने रखी होगी, उसको देखेगा, उसको पढ़ना नहीं आ रहा होगा, फिर भी फोटोज लगे होंगे, पिक्चर्स जो बनी होंगी उसको देखेगा, क्या हो सकता है ये क्या है, फिर किधर भी जाएंगे रास्ते में भी पूछेगा मम्मी ये क्या है ये क्या है ये क्या करने का। तो ये मनुष्य मात्र की ऐसी लालसा हृदय के अंदर कि जो विषय अज्ञात है, जो उसे नहीं खबर है, उसको जानना चाहता है। लेकिन श्री प्रभुपाल जी बताते हैं कि कितना दुर्भाग्य है कि इस संसार में सही चीज जो वाक्य में जाननी चाहिए, ब्रह्म जिज्ञासा, वास्तविक जो जिज्ञासा है जिससे हमारी समस्त जिज्ञासाओं की तृष्टि हो जाएगी, ऐसा साहित्य ऐसी किताबें यहाँ हमें संसार में पढ़ने के लिए नहीं मिलती हैं, बल्कि ऐसे शास्त्र अक्सर ऐसी पुस्तक हैं या मैगजीन्स हमें पढ़ने के लिए हमारी आज की न्यू जनरेशन को मिलती है, जो कि बस भौतिक जो लौकिक कहानियां हैं, कविताएं हैं, कल्पनाएं हैं, उनसे रची हुई है और ज्यादातर जो है वो इंद्र तृप्ति में ही उनका अंत होता है। और ऐसे जो किताबें हैं, जो मैगजीन हैं, जो पुस्तक हैं, जो न्यूज़पेपर हैं, श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं बिल्कुल व्यर्थ है, आपके टाइम का वेस्ट कर रहे हैं, आपके ज्ञान का वेस्ट, वो पढ़कर क्या फायदा। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं एक दफा कि न्यूज का मतलब होता है नया, यानी कि न्यूज का क्या मतलब होता है, एक चीज नई है और एस लगा दिया मतलब बहुत सारी नई नई चीजें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। लेकिन वो न्यूज़पेपर आज आपके टेबल पे आया है, आप उसको पढ़ते हो, न्यूज़पेपर है, और कल वो क्या हो जाता है, ओल्ड पेपर, दिस इज ओल्ड, आज का कहा है, तो वो न्यूज़पेपर नहीं रह जाता। लेकिन यहाँ पर हमें एक ऐसी साहित्य, क्योंकि जो आज का व्यक्ति है वो सदैव क्या चाहता है, कुछ नया पढ़ने के लिए मिले, कुछ नया जानने के लिए मिले, कुछ नया सीखने के लिए मिले। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बात करी में बताया कि इस संसार में तो कुछ भी ऐसा भौतिक जो रचनाएं हैं, जो साहित्य है, उसमें कुछ नया नहीं है, बल्कि क्या है, च्युइंग द च्युइस, जो पहले से पुनः पुनः सर्वितं सर्वानां। वही भौतिक आसक्ति, वही भौतिक इंद्रिय तृप्ति जो कि जीव न जाने कितने करोड़ों जन्मों से करता आया है। हर एक योनि में जिसने जो इंद्रिय तृप्ति प्राप्त की है, वही इंद्रिय तृप्ति, वही वासना यदि आज उसको प्राप्त हो रहे हैं, तो ये तो कोई मनुष्य देह का सिद्धि नहीं हुई। तो उसको कुछ ऐसा साहित्य प्रदान करना चाहिए जो कि इन समस्त दोषों से दूर हो, जो वास्तविक में उसको उसकी वास्तविकता का साक्षात्कार कराए, आध्यात्मिक साक्षात्कार कराए। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं इस भौतिक जगत में ऐसा मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो साहित्य है वो बिल्कुल व्यर्थ है, लेकिन फिर भी जो अज्ञानी लोग हैं उनके लिए बहुत ही सुंदरता से उसको डेकोरेट करके उनके सामने बताया जाता है। और इसको पढ़कर जो आसक्त जीव होते हैं, अज्ञानी होते हैं, अल्पज्ञ होते हैं, और अधिक अधिक इस संसार में फंसते जाते हैं और अनेक हजारों पीढ़ियों से मोक्ष की उनके लिए कोई आशा नहीं दिखती। लेकिन क्योंकि नारद मुनि परम वैष्णव हैं, तो वैष्णव जो होते हैं वो बहुत करुणा उनके हृदय में होती है, और इस करुणा के कारण वो भौतिक जितने भी जन सामान्य है उनका कल्याण करना चाहते हैं। इसलिए वो व्यास देव से ऐसी शास्त्र की रचना करने का उपदेश देते हैं जो केवल आकर्षित, ना केवल आकर्षित हो अपितु सभी प्रकार से बंधनों से मोक्ष प्रदान, यानी कि आपको पढ़ने में भी मजा आए। और पढ़ने का फायदा क्या हो कि आपको फिर से कभी दुख ना मिले, फिर से कभी इस भौतिक जगत में आना ना पड़े, भाव बंधन के समस्त जकड़न से, समस्त जो बंधन है इस संसार के, उससे मुक्ति भी प्राप्त हो। तो श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि श्री वेद व्यास जी या उनके प्रतिनिधि ही वो सुपात्र हैं जो कि इन वस्तुओं को सही से, मतलब सही तरह से देखने में भली भांति प्रशिक्षित हैं। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि श्रीला वेद व्यास जी ही क्यों, मतलब उनको ही क्यों चुना गया, वो क्यों है ना लिखे, या वो ही क्यों सुपात्र हैं। तो इसका यहाँ पर उत्तर दिया जा रहा है हमारे श्लोक में। अथो महाभाग, नारद मुनि अपने शिष्य को बोल रहे हैं कि आप परम भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? क्योंकि वेदव्यासी भगवान का शक्तियावेश अवतार है, भगवान ने चुना है वेदव्यासी को यह साहित्य, यह शास्त्र का, शास्त्रों का निर्माण करने और बाकी समस्त शास्त्रों का निर्माण करने के साथ साथ श्रीमद् भागवतम जो कि साक्षात भगवान है उसको, उसकी रचना करने के लिए वेदव्यास जी को चुना गया। तो इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। और आज एक गुरु अपने शिष्य को कह रहे हैं तुम्हारे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं, तुम महाभाग्य हो, तुम परम भाग्यशाली हो। भगवान कहते आप, यानी वेदव्यास जी को कह रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं अमोघधृक। अमोघधृक का मतलब होता है, मोघ कहते हैं गलती को, और अमोघ मतलब दोष ना हो जिसके अंदर, कोई दोष ना हो, यानी कि वो सिद्ध दृष्टा, उसकी दृष्टि में कोई दोष ना हो, यानी कि वो भूत भविष्य वर्तमान। अब देखो चार तरह के, यहाँ पर हमारा जो शरीर है भौतिक शरीर, उसमें चार तरह के दोष होते हैं, है ना। हम गलतियां करते हैं, धोखा करते हैं, धोखा देते हैं, और मोहग्रस्त हो जाते हैं, अपूर्ण इंद्रियां हैं। लेकिन ये सारे दोष हम भौतिक प्राणियों में होते हैं, वेद व्यास जी के अंदर नहीं, क्योंकि वो इसीलिए उनको क्या कहा कि आप अमोघधृक हो, क्योंकि आपके अंदर चार दोष नहीं है, तो आप भूत भविष्य वर्तमान को एकदम क्लियरली देख सकते हो, और जो कुछ सत्य है उसी का आप अपनी साहित्य में लिखोगे। क्योंकि अब देखो श्री प्रभुपाद जी बोलते भागवत महापुराण 5000 साल पहले लिखा गया, और आज उसमें लिखी हुई सारी चीजें सही हो रही है। भागवत महापुराण में वेद व्यास ने शास्त्रों में हजारों साल पहले लिखा, जल जानव लक्षणी स्थावर लक्ष्य विशंति कृमिया रुद्र संख्या का तीसर लक्षणी पक्ष। तो ये जल के 9 लाख प्राणी हैं, ऐसे नहीं लिखा 8,50,000 या इतने, बस ये जो फिक्स क्वांटिटी लिखी है ना वो ही सत्य है, जो कुछ लिखा गया। अब हजारों साल पहले लिखा गया भूगोल, तो भले कितना ही साइंसदान बोल दें कि ये जो धरती है वो स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है या ओवल है, कुछ भी चलेगा नहीं, क्योंकि वास्तव में भूगोल है, क्योंकि वेदव्यास जी ने लिखा। क्यों वेदव्यास जी ने जो लिखा है वो सत्य है? क्योंकि उनकी दृष्टि अमोघ दृक है, वो गलती नहीं कर सकते। तो जो वेद में लिखा है वही सत्य है, जो शास्त्र में लिखा है वही सत्य है, और वो किस लिए सत्य है? क्योंकि वेदव्यास जी ने इनका इनकी रचना की है, जिनके अंदर कोई गलती नहीं। और आगे और कहते हैं शुचि, अर्थात आप पवित्र हो, मतलब आपके अंदर कोई मल नहीं है, किस कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सारे दोष नहीं है। और इसके अतिरिक्त जो अपवित्रता, देखो अपवित्रता दो प्रकार की हमने पढ़ी, एक शारीरिक अपवित्रता होती है और एक मन की अपवित्रता होती है। वो शारीरिक शुद्धि जैसे हम ना आचमन करते हैं, स्नान करते हैं, वो होता है। और मन के अंदर जो अपवित्रता है वो समस्त वेद व्यास जी के अंदर कोई अपवित्रता नहीं है, निर्मल है, शुद्ध है, श्रवा अर्थात प्रसिद्ध है, यानी उन्होंने वेदों के द्वारा प्रसिद्ध किया कि उनके शास्त्रों में कोई गलती नहीं है। और उसके बाद कहते हैं सत्यरतो, सत्यरतो का मतलब होता है वो हर हाल में सत्य का पालन करते हैं, कभी भी उनके किसी कृत्य में झूठ नहीं होगा, वो समय सदैव सत्य। सत्य व्रत का मतलब होता है जो कभी भी झूठ नहीं बोलता, चाहे कुछ भी हो जाए वो सही सत्य सत्य बात करेगा। और सत्य क्या है, यानी कि वो भगवान के विषय में आपको बताएगा। और संसार में ऐसे कहते हैं सत्य हरि भजन जगत सब सपना, तो सत्य भगवान का नाम है, तो उसी के विषय में जो साहित्य में लिखा जाएगा वही पढ़ने योग्य। जैसे हम पहले कहेंगे कि सुना है पहले वाले श्लोक में कि जिसमें भगवान का गुणगान नहीं है वो शास्त्र चाहे कितने ही सुचारू ढंग से किया रचा गया हो, कितना ही बहुत ही सुंदर तरीके से उसको रचा गया हो, लेकिन यदि भगवान की भक्ति के विषय में नहीं बताया जा रहा है तो वो कौओं का तीर्थ है, जिस तरह कौओं की गंदगी होती है ना ऐसे। लेकिन क्योंकि ये सत्य व्रत है वो गंदगी वाली चीज नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ सत्य विषय में भगवान के विषय में लिखेंगे, और इसलिए उनको सत्य व्रत कहा गया। और धृत व्रत का मतलब होता है आध्यात्मिक गुणों में स्थित, वो अपनी भक्ति के कारण दृढ़ व्रत है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो भगवान की भक्ति करते हैं। अब उनके अंदर भक्ति के कितने सारे गुण हैं, जो सदैव भगवान की महिमा का गुणगान करना चाहते हैं, भक्तों को जो पतित आत्माएं जो पीड़ित हैं उनको भगवान के विषय में बताना चाहते हैं ताकि उनका दुख दूर हो, वो दृढ़ भक्ति में दृढ़ स्थित है, आध्यात्मिक गुणों में स्थित है, उनके गुण खत्म नहीं होंगे एकदम। ऐसा नहीं है कि कोई चीज आकर उनको विचलित करके उसके दृढ़ वृत्त को खत्म करेगी, नहीं, वेद व्यास जी जो है वो दृढ़ वृत्त है। इसलिए क्या करना है आपको, ये 5 गुण बताए, एक तो आप बहुत भाग्यवान हो और आपकी दृष्टि अमोघ है, आप पवित्र हो, आप प्रसिद्ध हो, सत्य में लगे हुए हो और दृढ़ वृत्त हो। इसलिए क्या करो, उरुक्रमस्य किसको बोलते हैं बताए, जो बहुत ही उरु का मतलब होता है बहुत बहुत उत्तम, क्रम मतलब कार्य से करने वाला, यानी अलौकिक कार्य करने वाले ईश्वर। यहाँ पर नारद मुनि वेद व्यास जी को कह रहे हैं देखो ऐसे किसी है ना निराकार ब्रह्म की रचना, ब्रह्म के विषय में लिखने की जरूरत नहीं है, उससे लोग का कल्याण नहीं होगा, उससे बल्कि भटक जाएंगे। तो क्या करो, वो भगवान जो बहुत ही सुंदर सुंदर और बहुत ही उत्तम महान लीलाएं करते हैं ना, उनके विषय में लिखो। वो भगवान जिसने पैदा होते ही इतनी बड़ी राक्षसी पूतना को मार डाला, वो भगवान जो 7 साल के थे और 7 दिन तक एक छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया, जो कभी अरासुर को खेल खेल में मार देते हैं तो कभी कालिया के ऊपर नृत्य करते हैं। ऐसे बहुत अलौकिक कार्य करने वाले भगवान को अखिल भगवान के विषय में बताओ और उससे क्या होगा? अखिल बंध मुक्तये, इससे इस पूरे संसार के बहुबंधन जो है वो समाप्त हो जाएंगे। आपको लिखना है तो कुछ ऐसा लिखो जिससे क्रांति आ जाए, जिससे जीव मुक्त हो जाए, जिससे जीवों को बारंबार इस संसार में जो कि दुखों से भरा हुआ है उसमें न आना पड़े। तो आपको क्या करना है? उरु क्रमस्य खिल बंध मुक्तये, कि जो ऐसे भगवान जिसके अलौकिक कार्यकलाप हैं, जिनको पढ़कर समस्त जीवों का कल्याण हो जाएगा, वो बहुबंधन से मुक्त हो जाएंगे, उनके विषय में लिखो। तो ऐसा लगता है कि ठीक है, वो सोचे कि सही है, फिर भगवान के विषय में दो चीज पता है मुझे, ऐसे से लिख लेता हूँ, जल्दी एक शास्त्र बन जाएगा। तभी नारद मुनि कहते नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है? समाधि नानुस्मरा, यानी कि आपको समाधि में बैठना है, एकदम स्थिर होकर अपने चित्त को भगवान की लीलाओं पर केंद्रित करना है और अनुस्मरा बार बार सोच कर वर्णन करो। कोई एक लीला, कोई एक स्टेप भी छूटना नहीं चाहिए। भगवान की लीला का हर एक पाठ भगवान के मुख से निकला हुआ हर एक शब्द इतना इम्पोर्टेंट है कि आप उसको बारंबार अनुस्मरण, बार बार सोचो और उसके बाद वर्णन करो, समाधि में स्थित हो जाओ। क्या वर्णन करो? तद विचेष्टितम, तद मतलब भगवान की विचेष्टितम, मतलब जो जो भगवान ने विविध प्रकार की लीलाएं की हैं उनके विषय में वर्णन करो। और आपको ऐसा नहीं है, डोंट मैन्युफैक्चर योर ओन, अपनी जो भी तुम्हारी इच्छा के अनुसार कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? समाधि में स्थित हो जाओ और फिर भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करो। इससे क्या होगा? अखिल बंध मुक्तये, जितना भी ये संसार है, उन ये जो पतित आत्माएं जो इतने करोड़ों जन्मों से पीड़ित हैं, उन समस्त पतित आत्माओं के बहुबंधन का कट जाएंगे और वो अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं बड़े दुख के साथ कि इस संसार में, विश्व में हजारों ऐसे साहित्यकार हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का निर्माण किया, बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इनमें किसी में भी भगवान की दिव्य लीलाओं का सही रूप में, भगवान के नाम गुण लीला और भगवान के विषय में एकदम स्पष्टतया नहीं लिखा गया है। इसका कारण यही है कि इन शास्त्रों के पढ़ने के बाद भी किसी की आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है, क्योंकि वो वास्तविक आध्यात्मिक शून्यता है। वास्तविकता क्या है कि पहले हम लोगों ने कल क्या पढ़ा कि वो ब्रह्म ज्ञान जिसके अंदर भगवान के साथ आपका प्रेम नहीं है, उसके विषय में भगवान के साथ प्रेम का संबंध निर्माण नहीं हो रहा है, वो ब्रह्म ज्ञान भी न शोभते, है ना, वो ज्ञान भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर सकाम कर्म जो कि वैसे ही निष्कर्ष होते हैं, वैसे ही बहुत ही निम्न कोटि के होते हैं, वो भला भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के बगैर कैसे आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, कैसे वो अच्छे हो सकते हैं? तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है क्योंकि उन सारी साहित्यों में भगवान के साथ आपका प्रेम संबंध निर्माण करके नहीं बताया गया, भगवान के विषय में स्पष्ट नहीं बताया गया, इसलिए वो जीव का कल्याण नहीं कर सकते। लेकिन वैदिक साहित्यों में विशेषतया यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने दो शास्त्रों की उल्लेख किया है, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण। ये दो शास्त्र ऐसे हैं जो मानव जीवन का कल्याण कर सकते हैं। भक्तों, हमारा ये सौभाग्य है कि हमें इस जन्म में इन दो शास्त्रों को पढ़ने का अवसर मिल रहा है। हमारे सामने ही कितने सारे लोग हैं जिनकी उम्र 40, 45, 50 साल हो गई, अभी तक उनको खबर भी नहीं भगवद गीता भगवान बोल क्या रहे हैं, भगवद गीता का क्या कारण, भगवान ने बताई क्यों है, भागवतम में भगवान के विषय में क्यों लिखा गया, क्या लिखा गया, इससे पढ़ने से क्या फायदा होगा। ये हमारे ऊपर गुरु और गौरंग की असीम कृपा है कि हम रोज श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं, रटन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही एक कार्य ऐसा है जो करने से खिला बंध मुक्त ये हम इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो एटलीस्ट उस मुक्ति के रास्ते पर अग्रसर तो हो गए हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस रास्ते पर चला हुआ एक भी कदम जाया नहीं होता, कभी क्षय नहीं होता। तो ये हमारे ऊपर कृष्ण और गुरु महाराज गौरव महाप्रभु की असीम कृपा है कि ये दो शास्त्र हमारे जीवन में हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त बहुबंधन से छूटने का और कोई तरीका नहीं है। ये शिला प्रभुपाद जी की असीम कृपा है कि आज हम श्रीमद् भागवतम महापुराण को समझ सकने का प्रयास तो कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम विश्व भर के जीवों को समस्त प्रकार के भवबंधन से मुक्ति पूर्ण छुटकारा दिलाने के लिए है। यही एकमात्र शास्त्र है जो आपको पूर्ण ये भवबंधन से छुटकारा दिला सकती है। भगवान की लीलाओं का ऐसा दिव्य आख्यान व्यास देव तथा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधियों जैसे मुक्त जीवों द्वारा ही वर्णित किया जा सकता है। ये केवल कोई साधारण व्यक्ति भगवान की लीलाएं लिखने के लिए योग्य नहीं है, ये केवल और केवल श्री चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त जिसको हो। वेद व्यास जी जिन्होंने भगवान से, भगवान के नारद मुनि, भगवान ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा ने नारद को और नारद जी ने वेद व्यास जी को, वो स्वयं भगवान के शक्तियावेश अवतार है, इसीलिए वही योग्य है कि इस साहित्य को लिख सके। और वो क्यों लिख सकते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्योंकि ये भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान की लीलाएं तथा उनकी दिव्य प्रकृति भक्ति के कारण उनके सामने प्रकट हो जाती है। भगवान की लीलाएं कोई पढ़ने लिखने या फिर ना ज्ञान का विषय नहीं है, ये तो कृपा का विषय है। तो जब भगवान भक्ति के द्वारा उनके ऊपर कृपा करते हैं, ये भगवान जो है उनके विषय में जानना हमारे ज्ञान से नहीं, हमारी तपस्या से नहीं, योग अभ्यास से नहीं प्राप्त होंगे, भगवान तो शुद्ध प्रेम और भक्ति से प्राप्त होंगे। भक्तों, मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी कथा बताऊंगी, फिर उसके बाद हम समाप्त करेंगे। चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीला में चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ शिवास के आंगन में कीर्तन करते थे, तो जब सुबह को कीर्तन होता था ना, दोपहर को, सुबह को, तो सारे लोग को ये परमिशन होती थी कि वो आ सकते थे और दिव्य कीर्तन का आनंद ले सकते थे। परंतु रात में जो कीर्तन होता था उसमें किसी को भी ये परमिशन नहीं होती थी कि वो अंदर आ सके। तो एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण, उसने बहुत ही है ना इंसिस्ट किया, प्रार्थना इंसिस्ट किया, मुझे अंदर जाना है, मैं योग्य हूँ, मुझे अंदर जाना है, मुझे कीर्तन देखना है महाप्रभु का। लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया और वो बहुत दुखी हुए। फिर सुबह को चैतन्य महाप्रभु के पास आए और है ना शिवास बाहर खड़े थे, तो शिवास को बोला कि मुझे महाप्रभु से मिलना है। तो बोला क्यों, क्या काम है आपको? बोला मुझे क्यों नहीं आने देते अंदर, आपको पता है मेरे बारे में, मैं कौन हूँ? तो बोला आप कौन हो, मुझे हमें नहीं खबर आप कौन हो। तो बोला मैंने अपने जीवन में अनाज नहीं खाया, मैं कभी भी अनाज का भी सेवन नहीं करता हूँ, मैं खाली दिन में एक बार दूध पीता हूँ, कितनी पवित्रता है मेरे अंदर, और तुम है ना मुझे अंदर नहीं आने देते हो, अपने आप को बड़ा भक्त समझते हो और मुझे कीर्तन में नहीं आने देते हो आप लोग। तो श्रीवास ठाकुर ने जाकर चैतन्य महाप्रभु को बोला, एक ब्राह्मण आया है जो कहता है कि मैं खाली दूध पीता हूँ, आप मुझे कीर्तन में आने दिया करो। तब चैतन्य महाप्रभु ने बोला उसको बुलाओ। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कहा कि आपको किसने कहा दूध पीने से भगवान मिलता है? दूध पीने से भगवान मिलता है? भगवान दूध पीने से नहीं मिलता, भगवान विनम्रता से मिलता है। भगवान प्रेम से मिलता है, भगवान समर्पण से मिलता है, भगवान भक्ति से मिलता है। तो यहाँ पर भी श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब भगवान की कृपा होती है किसी भक्त के ऊपर, तो वो दिव्य लीलाएं स्वतः सुफूरित होती हैं। दूसरा कोई चाहे अनेक वर्षों तक चिंतन क्यों ना करे, तो भगवान के कार्य को नहीं जान सकता, ना उनका वर्णन कर सकता है। इसीलिए ये श्री वेद व्यास जी की असीम अनुकंपा है कि उनके द्वारा इस महान साहित्य श्रीमद् भगवद गीता का आविष्कार हुआ। क्योंकि मुक्त जीव जो होते हैं उनकी इंद्रियां शुद्ध होती हैं और पवित्र होते हैं, और वही इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या भगवान श्री कृष्ण की सेवा की, उन्हीं इंद्रियों से सेवा करके उनको प्रसन्न करके और उनके विषय में बता सकते हैं, उनकी लीलाओं का गान कर सकते हैं। तो आज नारद मुनि ने वेदव्यास जी के इतने सारे गुणों का वर्णन किया और उन्हें बताया कि अब आप कार्य शुरू करो। किसके लिए? जो भौतिक पीड़ा में ग्रस्त हैं, जो बंधन में फंसे हुए हैं, उनके इस बंधनों से मुक्त दिलाने के लिए आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना स्टार्ट करो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।